हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुनैना का बिल्कुल भी मन नहीं था आदित्य के साथ जाने का, लेकिन उसके पास अब कोई और जगह नहीं बची थी। वो जिस जगह पर थी वो भी आदित्य का ही घर था, और अपने घर वालों से सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान कुछ देर पहले ही उसने चीख चीख कर कर दिया था। इसलिए फिलहाल कोई और रास्ता ना देखकर सुनैना आदित्य के साथ ही चल पड़ी। लेकिन बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना, और हम सब तुम्हारे परिवार वाले हैं, यहाँ क्यों नहीं रुकना तुम्हें? इस बार एक दूसरी औरत आदित्य के सामने आते हुए बोली, बुआ जी प्लीज, आप जानती हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से, मैंने कह दिया है मुझे यहाँ नहीं रुकना है तो नहीं रुकना है, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो आज रात यहीं रुक सकती हैं और कल सुबह केयरटेकर को घर की चाबी देकर चले जाइएगा। सुनैना ने नोटिस किया कि उस औरत से बात करते वक्त आदित्य के लहजे में कुछ नरमी थी, लेकिन एटीट्यूड वही था, और उनकी आगे कोई भी बात सुने बिना वो वहाँ से चला गया। सुनैना उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी, शादी से पहले वो किसी से भी नहीं मिली थी, आदित्य की फ़ोटो तक दूर से नहीं देखी थी क्योंकि वो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिर ज़बरदस्ती अपने घर वालों के दबाव की वजह से उसे शादी करनी पड़ी। उसने आदित्य को आज से पहले कभी नहीं देखा था और न ही उससे मिली थी। जाना तो दूर की बात, लेकिन शादी होने से लेकर अब तक जितनी बार भी उसने आदित्य को देखा था उसे उसका चेहरा काफ़ी जाना पहचाना सा लगता था, लेकिन सुनैना को याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कब और कहाँ देखा है। खैर, सुनैना के मन में इस शादी को लेकर काफ़ी गुस्सा था आदित्य पर, इसलिए वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और न ही ज़्यादा गौर करके इस बारे में सोचने या याद करने की कोशिश करती थी। आदित्य उन सभी लोगों को वहाँ पर छोड़कर घर से बाहर की तरफ बढ़ा, तो सुनैना भी उसके पीछे ही घर से बाहर आ गई। वहाँ पर रवि पहले से ही कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। आदित्य ने कार का दरवाज़ा खोला, सुनैना कार के अंदर बैठने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे लगा कि शायद आदित्य ने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला है, लेकिन आदित्य खुद भी कार में बैठने के लिए उस तरफ बढ़ा और दोनों एक दूसरे से टकरा गए। आउच, देखकर नहीं चल सकते क्या, या शायद कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, इतने ज्यादा नशे में हो? सुनैना आदित्य से टकराने के बाद कुछ पीछे हटते हुए बोली, मुझे क्या पता था तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी है कार के अंदर बैठने की। नॉर्मली दुल्हनें तो जाने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं शादी के बाद भी, और तुम्हें तो मुझसे भी पहले कार में बैठना है। आदित्य ने उसकी बात का जवाब दिया, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, वेस्ट ऑफ टाइम टोटली। तुम्हें खुद भी समझ आ रहा है कि क्या बोल रहे हो और क्या नहीं? सुनैना ने आदित्य की बात का जवाब देते हुए कार के अंदर आकर बैठ गई। उसके कार में बैठने के बाद आदित्य ने बाहर से ही कार का गेट बंद कर दिया और खुद आकर आगे कार की फ्रंट सीट पर रवि के साथ बैठ गया। आदित्य के कार में बैठने पर रवि ने तुरंत ही कार स्टार्ट कर दी और वे लोग वहाँ से निकल गए। कार के बैक सीट पर बैठी हुई सुनैना बार बार अपने मोबाइल से किसी का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ समझ में आ रही थी कि वो जिसका भी नंबर डायल कर रही है वो इंसान कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। आदित्य भले ही आगे बैठा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग और आंखें दोनों ही पीछे बैठी सुनैना में ही लगे हुए थे, और वो कार में लगे मिरर से बार बार चोर नजरों से उसे देख रहा था, लेकिन सुनैना को इस बात का पता चलने से पहले ही वो अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता था। सुनैना का ध्यान आदित्य की तरफ नहीं था, वो अपने में ही काफी परेशान लग रही थी। रवि कार चला रहा था, उसे शायद पता था कि यहाँ से लेकर घर तक का सफर काफी लंबा है, और फिलहाल उन तीनों की आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। ऐसे में चुपचाप लंबा सफर और ज्यादा लगता है, इसलिए रवि ने कार का एफएम ऑन कर दिया बिना किसी से पूछे ही, और कार के एफएम पर गाना बजने लगा। सुनैना जिसे कॉल लगा रही थी वो तो वैसे भी लग नहीं रहा था, इसलिए उसका ध्यान भी गाने की तरफ ही गया।
तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर न जाऊं कहीं, ओ हो हो। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर न जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रुके ना रुके नैना, तेरी ओर है इन्हें तो रहना, रोके ना रुके नैना।
गाने के बोल सुनकर कुछ पल के लिए आदित्य भी उस गाने में खो गया। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे वो गाने के सभी बोल और एहसासों को महसूस कर रहा हो।
काटता हूँ लाखों लम्हे, कटते नहीं हैं, साए तेरी यादों के हटते नहीं। काटता हूँ लाखों लम्हे, कटते नहीं हैं, साए तेरी यादों के हटते नहीं। सूख गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, पलकों से फिर भी बादल छंटते नहीं।
आदित्य खुद को संभालने की काफी कोशिश कर रहा था, अपनी आंसू छिपाने की भी, लेकिन शायद संभाल नहीं पा रहा था। उसने अपना चेहरा बाहर की तरफ करते हुए अपने आंसुओं को पोंछा, फिर जैसे ही वापस कार के अंदर की तरफ मुड़ा, उसने कार के ड्रॉअर में रखी हुई एक काफी महंगी शराब की बोतल निकाली और सीधे बोतल से ही पीने लगा।
खुद को मैं हंसाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता, रोके ना रुके नैना, तेरी ओर है इन्हें तो रहना, रोके ना रुके नैना। ओहो।
सुनैना का बिल्कुल भी मूड नहीं था इस वक्त गाना सुनने का, लेकिन फिर भी उसने रवि या आदित्य में से किसी से भी गाना बंद करने को नहीं कहा और चुपचाप ही पीछे कार की सीट पर टेक लगाकर बैठी रही। आंसू तो उसकी आंखों में भी थे, लेकिन गाने के बोलों के हिसाब से ये आंसू इश्क में मिले दर्द के नहीं, बल्कि अपने और परिवार वालों से मिले दर्द के थे।
मम हाथों की लकीरें दो मिलती जहां है, जिसको पता है बता दे जगह वो कहाँ है। मम हाथों की लकीरें दो मिलती जहां है, इश्क में जाने कैसी ये बेबसी है, धड़कनों से मिलकर भी दिल तन्हा है। दूरी मैं मिटाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता, रोके ना रुके नैना, तेरी ओर है इन्हें तो रहना।
लेकिन आदित्य की आंखों में भी इस वक्त आंसू थे। उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। अब वो और ज्यादा नहीं सुन सकता था, इसलिए उसने गाना खत्म होते ही रवि की तरफ घूर कर देखा। रवि समझ गया कि आदित्य को शायद ठीक नहीं है, या फिर इस गाने को सुनकर और ज्यादा खराब हो गया है। रवि ने पहले तो आदित्य पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आदित्य के इस तरह से घूर कर देखने पर रवि समझ गया और उसकी जुबान सूख गई। उसने जल्दी से रेडियो बंद कर दिया और चुपचाप सामने देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। आदित्य ने फिर से कार के सामने लगे मिरर से एक नज़र सुनैना को देखा और पाया कि सुनैना का ध्यान इस वक्त उस पर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अपने आप में ही किसी बात को लेकर परेशान नजर आ रही थी। आदित्य ने उससे उसकी परेशानी की वजह नहीं पूछी, क्योंकि वो शायद जानता था कि सुनैना उसे बताएगी भी नहीं, इसलिए उसने बोतल में बची हुई बाकी शराब एक ही सांस में पी ली।
सर, आप ये क्यों? आदित्य ने पहले ही काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और अभी अभी फिर से रवि के सामने उसने एक पूरी बोतल खाली कर दी थी और दूसरी बोतल भी निकालने लगा था, इसलिए रवि ने उसे रोका और समझाते हुए बोला। लेकिन रवि के बोलने का कोई असर आदित्य पर नहीं हुआ और वो दूसरी बोतल भी निकाल चुका था।
रहने दीजिए ना सर, मैम भी हैं साथ में, वो क्या सोचेंगी आपके बारे में? आदित्य को दूसरी बोतल खोलने की कोशिश करता देख रवि ने उसे सुनैना का हवाला देकर समझाने और रोकने की कोशिश की।
कोई कुछ भी सोचे रवि, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं सबकी सोच तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना। सोचने दो जिसे जो सोचना है। बोलते हुए आदित्य ने दूसरी बोतल का ढक्कन खोल लिया और उसे भी सीधे मुंह लगाकर पीने लगा। आदित्य को इस तरह से एक के बाद एक शराब की बोतल पीते देखकर सुनैना ने हिकारत से अपनी नजरें फेर ली। रवि की बात सुनकर उसने जवाब दिया, कोई क्या सोचेगा, इससे पहले इंसान को ही खुद की फिक्र होनी चाहिए। रहने दो, तुम बेकार ही समझा रहे हो, इतना तो जानते ही होगे तुम अपने सर को शायद। सुनैना की बातें सुनकर रवि ने हैरानी भरी निगाहों से सुनैना की तरफ देखा और फिर आगे देखकर गाड़ी चलाने लगा। उसे सुनैना से इस तरह की बातों की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे लगा था वो बाकी लोगों की तरह आदित्य को समझाएगी, शराब पीने से रोकेगी या फिर कम से कम उस पर गुस्सा करेगी या नाराज होगी इतनी ज्यादा शराब पीने के लिए, लेकिन नहीं, सुनैना तो इसके उलट ही बोल रही थी कि उसे क्या फर्क पड़ता है जब आदित्य को ही खुद की फिक्र नहीं है तो। तभी रवि ने कार रोक दी और आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, सर हम पहुंच गए, क्रमशः।